ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम सेवंथ कैंटो अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 की आवृत्ति करेंगे। 10 ही है ना? त्रिवर्गनाति कृच्छेण भजेत गृहमेद्यपि यथा देशं यथा कालं यावत् देवोपपादितम्। त्रिवर्गं नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेद्यपि यथा देशं यथा कालं यावत् देवोपपादितम्। त्रिवर्गं या नातिकृच्छ्रेण भजेत गृहमेद्यपि यथा देशं यथा कालं यावत् देवोपपादितम्। माताजी शब्दार्थ त्रिवर्गम तीन सिद्धांत क्या हुआ? बोलते क्यों नहीं है? धर्म अर्थ तथा काम न नहीं अतिकृच्छ्रेण कठिन प्रयत्न के द्वारा भजेत संपन्न करे ग्रह मेधी गृहस्थ जीवन में ही रुचि रखने वाला व्यक्ति अपि यद्यपि यथादेशम स्थान के अनुसार यथा कालम समय के अनुसार यावत जो भी देव भगवत कृपा से उपपादितम प्राप्त। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, यदि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म अर्थ तथा काम के लिए अधिक श्रम नहीं करना चाहिए। यहां तक कि गृहस्थ जीवन में भी भगवत कृपा से और स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो कुछ उपलब्ध हो जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए और संतुष्ट रहना चाहिए। उसे अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। तात्पर्य, मानव जीवन में चार सिद्धांतों की पूर्ति होनी चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सर्वप्रथम मनुष्य को विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए धार्मिक बनना चाहिए और तब अपने परिवार के पालन हेतु एवं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ धन कमाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्कार विवाह है, क्योंकि संभोग या मैथुन भौतिक शरीर की प्रमुख आवश्यकता है। यद मैथुनादि ग्रहमेधि सुखम हि तुच्छम। यद्यपि मैथुन जीवन की उन्मत्त आवश्यकता नहीं है, उन्नत आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक प्रवृत्तियों के कारण पशु तथा मनुष्य दोनों में ही कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को वैवाहिक जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए और अतिरिक्त इंद्रिय तृप्ति या विषय जीवन में शक्ति व्यय नहीं करना चाहिए। जहां तक आर्थिक विकास की बात है, यह उत्तरदायित्व वैश्यों तथा गृहस्थों पर छोड़ देना चाहिए। मानव समाज को वर्णों तथा आश्रमों में विभाजित होना चाहिए। चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। गृहस्थों के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है। ब्राह्मण गृहस्थों को, यानी जो ब्राह्मण गृहस्थ हैं उनको अध्ययन, अध्यापन, यजन और याजन से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण को ये कार्य पारिश्रमिक लिए बिना करने चाहिए, किंतु जिस व्यक्ति को वह मनुष्य बनने की शिक्षा दे उससे वह दान ले सकता है। जहां तक क्षत्रियों का संबंध है, वे पृथ्वी के राजा माने जाते हैं और वैश्यों में पृथ्वी का वितरण कृषि के कार्यों में गोरक्षा तथा व्यापार के लिए होना चाहिए। शूद्रों को कार्य करना चाहिए, कभी कभी उन्हें बुनकरों, लुहारों, सुनारों आदि के वृत्तिपरक कार्यों में लगना चाहिए या फिर अन्न उत्पादन करने के लिए कठिन श्रम में लगना चाहिए। तो ये वे विभिन्न वृत्तिपरक कर्तव्य हैं जिन्हें जीविकोपार्जन के लिए मनुष्यों को करना होता है, और इसी तरह मानव समाज की भी उसको सीधा साधा होना चाहिए। किंतु इसमें प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी विकास में लगा हुआ है, माने टेक्निकल, जिसे भगवद्गीता में उग्र कर्म कहा गया है, अर्थात अत्यंत कठिन प्रयास कहा गया है। तो यही उग्र कर्म मानव मस्तिष्क के अंदर क्षोभ का कारण है। मनुष्य नाना पाप पूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कसाई घर, मदिरालय और सिगरेट फैक्ट्रियां खोलकर, और इंद्रिय भोग के लिए रात्रि क्लब, नाइट क्लब्स एवं अन्य प्रतिष्ठान खोलकर अपने को वे पतित बनाते हैं। तो इस प्रकार वे अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। निस्संदेह इन सारे कार्यों में गृहस्थ फंसते हैं। अतएव यहां पर अपिशब्द के प्रयोग का द्वारा यह सलाह दी गई है कि गृहस्थ होते हुए भी मनुष्य को उग्र कर्म में नहीं लगना चाहिए। किंतु जो लोग गृहस्थ नहीं हैं, अर्थात जो ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं और सन्यासी हैं, उन्हें कुछ न करके और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने का प्रयास करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी जनसंख्या के 3/4 अंश को इंद्रिय तृप्ति रोककर केवल कृष्ण भावनामृत की प्रगति में लगे रहना चाहिए। केवल 1/4 जनसंख्या को अग्रस्त होना चाहिए, और उसे भी सीमित इंद्रिय तृप्ति, कंट्रोल्ड इंद्रिय तृप्ति के नियमों के अनुसार रहना चाहिए। गृहस्थों, वानप्रस्थों, ब्रह्मचारियों और सन्यासियों को कृष्ण भावना भावित बनने में ही सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। इस प्रकार की सभ्यता देव वर्णाश्रम कहलाती है। तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन जो हमारा इस्कॉन का है, उसका उद्देश्य देव वर्णाश्रम की स्थापना करना है। तथा कथित वर्णाश्रम को प्रोत्साहित यह नहीं करता है। तो जो मानव समाज द्वारा वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित प्रयासों के अनुसार ये वर्णाश्रम नहीं होता है, इसको एनकरेज हमारा इस्कॉन नहीं करता है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देहं श्री गुरोः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पत्रिभुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस अध्याय का शीर्षक है कि आदर्श पारिवारिक जीवन। नारद जी इसका प्रवचन कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था कि गृहस्थ एताम पदवीं विधिना येन चांजसा अंजसा। बहुत आसानी से जो भगवान के धाम जा सके ऐसा गृहस्थ का क्या कर्तव्य होना चाहिए। यावत देव ऋषे ब्रूही मादृशो गृह मूढ़ धी। मुझ गृहस्थी में आसक्त व्यक्ति के लिए क्या कार्य मुझको करना चाहिए जिससे आसानी से मैं भगवान के धाम में जा सकूं। तो इसका उत्तर नारद जी कई श्लोकों में दे रहे हैं और ये आज का श्लोक उसी पर आधारित है कि मनुष्य को जो गृहस्थ हैं उनको क्या क्या करना चाहिए। गृहस्थ को मेन त्रिवर्गम, तीन जो वर्ग हैं हमारे, क्या धर्म अर्थ और काम, इनको करना चाहिए। तो त्रिवर्ग में धर्म का अर्थ है रिलीजन, माने हमको नास्तिक न बनके धर्म की तरफ भगवान की तरफ जाना चाहिए। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं कि उसको अपना घर चलाना है तो उसको धन भी कमाना चाहिए। और काम इंद्रिय तृप्ति, तो काम के लिए मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए। तो प्रभुपाद यहां पे दो चीज एडवाइस करते हैं कि एक तो उसको धन कमाना चाहिए और दूसरा मेन काम जो उसको करना है वह विवाह। विवाह के द्वारा वह अपने काम की इंद्रिय तृप्ति कर सकता है। और लेकिन प्रभुपाद जी यहां पे कहते हैं कि मनुष्य को हालांकि गृहस्थ में वैवाहिक जीवन की छूट है परंतु एक्सेस इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगना चाहिए। कंट्रोल इंद्रिय तृप्ति करना चाहिए, माने स्त्री का संग बहुत कंट्रोल्ड मनुष्य को करना चाहिए। जहां तक धन कमाने की बात है तो यह प्रभुपाद जी कहते हैं कि केवल वैश्यों को और गृहस्थों को ही यह करना चाहिए। मानव समाज को चार वर्णों में और चार आश्रमों में बांटा गया है, जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण हैं और चार आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थों के लिए यह आर्थिक विकास है, मतलब धन कमाने का उसको छूट है। पर जो ब्राह्मण गृहस्थ हैं उनको क्या करना चाहिए? बोले उनको केवल भागवत का श्रवण करना चाहिए, भागवत का पाठ करना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए और भगवान की पूजा करानी चाहिए दूसरों से, और भागवत का पाठ दूसरों से कराना चाहिए, भागवत की कथा दूसरों से करवानी चाहिए। तो ये ब्राह्मण के कार्य जो हैं, इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं वह अपना पारिश्रमिक, कुछ भी पैसा नहीं लेवे इसके लिए, वह फ्री में ये कार्य उसको करना चाहिए। हां, प्रभुपाद जी ने एक छूट दी है कि यदि वह अपना शिष्य बनाता है तो अपने शिष्य से वह दक्षिणा ले सकता है, अदरवाइज जहां भी प्रवचन करना हो उसके लिए वह धन को एक्सेप्ट नहीं करे। और जहां तक क्षत्रियों का संबंध है तो वे तो पृथ्वी के राजा माने जाते हैं, और वैश्यों में पृथ्वी का वितरण खेती करने के लिए होना चाहिए। वैश्यों का कार्य है कि गायों की वे रक्षा करें और व्यापार करें। शूद्रों को क्या कार्य करना चाहिए? इन तीन वर्णों की और उनको सेवा करनी चाहिए। जैसे कोई सुनार मन गोल्ड स्मिथ बन सकता है, कोई लोहार बन सकता है, तो इस प्रकार के ये कार्य उसको करके अपनी जीविका को चलाना चाहिए। तो जीविकोपार्जन के लिए ये सब कार्य हैं, लेकिन इन सब में लिप्त नहीं हो जाना चाहिए गृहस्थ को। जो थोड़ी सी मेहनत से जो काम हो सकता है उसी में उसको करना चाहिए, और सीधा साधा अपना जीवन उसको रखना चाहिए। लेकिन इस समय मनुष्य टेक्निकल प्रोग्रेस में लगा हुआ है, दुनिया भर की फैक्ट्रियों में वह लगा हुआ है, इसी को यहाँ पे प्रभुपाद जी ने उग्र कर्म कहा है यहाँ पे। तो ऐसे उग्र कर्मों में गृहस्थ को अपना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा कमाई के लिए जितना काम हो जाए उतने करके और भगवान का भजन उसको करना चाहिए। लेकिन आजकल क्या क्या हो रहा है? बोले ये जो गृहस्थ लोग हैं ये नाना प्रकार के पापपूर्ण कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जैसे कसाई घर खोल लेते हैं और मदिरालय पब खोल लेते हैं, सिगरेट फैक्ट्रियां खोल लेते हैं और नाइट क्लब्स चलाते हैं वे लोग। तो ये अपने जीवन को बर्बाद करना है। मैं अमेरिका में सिनसिनाटी में कथा कर रहा था, तो वहां पे जिनके यहां मैं ठहरा था तो वे उनके बहुत धनी आदमी हैं, कई स्टोर्स हैं उनके, 10-15 स्टोर्स हैं और कई उनके मोटल्स हैं, 10-15 मोटल्स हैं। तो वहां के स्टोर्स में ज्यादातर ये नॉनवेज और ये शराब, मांस और ये शराब बिकते हैं। तो हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप तो भक्त हैं, आपको जहां तक हो सके ये काम नहीं करना चाहिए। मैंने आपको यदि आप ये मटन और शराब नहीं बेचेंगे कितना लॉस होगा? बोले ज्यादा से ज्यादा 5-10%। तो मैंने कहा 5-10% के लिए आप क्यों अपना जीवन खराब करें, क्यों नहीं इसको छोड़ देते हैं? अपने लड़के को उसी समय हम गाड़ी में ये सब बातें कर रहे थे, आ रहे थे कथा करके, तो अपने लड़के को इमीडिएटली उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आज से ही ये सब बंद कर दो, उन्होंने ये सब बंद कर दिया। तो ये गृहस्थों के लिए ये चीज ठीक नहीं है। तो इसीलिए यहां पर इस श्लोक में जो अपी शब्द लगाया है कि गृहस्थों को हालांकि कमाने की उसको छूट है, लेकिन सरल सीधा जीवन बिताने के लिए जो कुछ कमाई हो जाए अच्छे तरीके से वही करना चाहिए। और जो गृहस्थ नहीं है जैसे ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या सन्यासी, उन्हें अपने आध्यात्मिक जीवन को ही प्रोग्रेस करना चाहिए, मतलब भगवान की भक्ति में ही उनको इन तीनों वर्गों को लगा रहना चाहिए, भागवत कहना, भागवत सुनना और भगवद गीता पे प्रवचन करना, कीर्तन करना, इन्हीं में अपना जीवन प्रोग्रेस में लगाना चाहिए। तो प्रभात जी कहते हैं इसका मतलब 3/4 जनसंख्या इन लोगों की ही होनी चाहिए जो केवल कृष्ण भावनामृत को आगे बढ़ाते हों, और 1/4 केवल कमाने वाले लोग हो सकते हैं, बाकी लोगों को इसमें नहीं जुटना चाहिए। तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी और गृहस्थ भी, इनको भी, चारों को क्या करना चाहिए, केवल कृष्ण की भक्ति में लग जाना चाहिए। थोड़ा बहुत कमा लिया ठीक है, लेकिन इसके पीछे अपना जीवन व्यस्त नहीं करना चाहिए, केवल भक्ति में इनको लग जाना चाहिए। और इसीलिए इसको देव वर्णाश्रम प्रभुपाद ने टाइटल दिया है। बोले वर्णाश्रम में तो मतलब गृहस्थ और ये सब आ गए, तो गृहस्थ कुछ भी काम करता है, हम उसको एनकरेज नहीं करते हैं, प्रभुपाद जी इस बात को यहां पे कहते हैं। तो क्या करना चाहिए, माने कैसे आदमी को अपनी जीविका चलाना चाहिए, तो कहते हैं कि यावत ध्रियत जठरम, जितना कमाने से पेट भर जाए बस उतना ही कमाना चाहिए। नहीं तो यदि एक्सेस धन किसी के पास होगा तो उसको चोर कहा गया, स्टेन, और दंडम अर्हति, उसको दंड मिलेगा। दंड की यहां पे परिभाषा प्रभुपाद जी ने की है कि दंड का अर्थ यह है कि बारंबार, क्योंकि वह भौतिकता में आसक्त हो जाएगा तो उसको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, मृत्यु हो जाएगी, और ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में वह फंस जाएगा और इसलिए उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों द्वारा प्रभुपाद जी कहते हैं, इवन हमारे गवर्नमेंट के द्वारा एक्सेस धन की और परमिशन नहीं दी जाती है, और ये तो आजकल देख ही रहे हैं, डिमोनेटाइजेशन से आप लोग देख ही रहे हैं वो कैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो गृहस्थों को अपना अतिरिक्त धन क्या करना चाहिए, बोले इस्कॉन को दे देना चाहिए दान में, कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए, और गृहस्थों को अपना एक्सेस धन डोनेट कर देना चाहिए। और इसीलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन मनुष्य को यह अवसर प्रदान करता है कि अपने अतिरिक्त आय को कृष्ण की सेवा में लगाए और मानव समाज के हित के लिए उसको खर्च करे, मानव समाज के हित के लिए माने उसको कृष्ण भक्ति में और लाया जाए। बोले कोई भी व्यक्ति देखो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो सकता कि मैं इतना धन कमा लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, नहीं नहीं हो सकता है, थोड़ा कमाएगा उसको और की लालसा रहती है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है, इसलिए मृत्यु के समय वह अत्यधिक दुख पाता है। क्यों दुख पाता है, क्योंकि अपनी इच्छाएं वह पूरी नहीं कर पाता कि ओहो मेरे को इतना तो कमाना चाहिए था, ये मुझको इतनी गाड़ी होनी चाहिए थी, इतना मकान अजमाना चाहिए था, ये सब हुआ नहीं, हमारी स्त्री के लिए इतना गहना होना चाहिए था, ये सब हुआ नहीं। तो इसीलिए प्रकृति के अनुसार फिर उसको जब इच्छाओं मरने के समय जो इच्छा करता है तो दूसरा शरीर मिलता है, और फिर ऐसा कुछ से शरीर मिलता है जो मानव जीवन में आते आते उसको 84 लाख योनियों में बदलना पड़ता है। इसलिए उसको 3 ताप, आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये ताप उसको और स्वीकार करना पड़ता है, हर जन्म में उसको ये 3 ताप मिलते जाते हैं। इसलिए कोई भी हमारा संबंधी हो, हमारा पिता हो, चाहे हमारा पुत्र हो, चाहे कोई हमारा भाई हो, इनमें ज्यादा लिप्त नहीं रहना चाहिए। हाँ ये लोग जो कहें ऊपर से इन बातों को मान लेना चाहिए, हाँ ठीक हम करेंगे, लेकिन सीरियसली इन बातों को नहीं लेकर के और कृष्ण भावनामृत में अपने आप को लगाना चाहिए, माने कृष्ण की भक्ति में ही अपने को मेहनत लगाना चाहिए। और कृष्ण भक्ति करने के लिए नारद जी ने यहां पे बड़े अच्छे 2 श्लोक बताए हैं कि श्रवण भगवतो अभिक्षणम, गृहस्थ को निरंतर अभिक्षण निरंतर भागवत श्रवण करनी चाहिए, शणवतो केवल भागवत पे डिपेंड हो जाना चाहिए, इसका अंदर बाकी सब तो आ ही गए हैं नवधा भक्ति वाले, तो भागवत के आश्रय लेकर के, क्यों, क्योंकि कथा अमृतम, ये भागवत की जो कथा है ये अमृत है, तो इस अमृत को श्रद्धानों श्रद्धा से اس کو سننا چاہیے. اور یتھا کالم اپشانتم جناورتم, مانے جیسا جیسا سمے ملے. سمے ملنے کا کیا ارتھ ہے کہ سمجھ لیجیے آپ نے کمانے کے لیے گئے, تو گئے تو آ کر کے سمجھ لو سات آٹھ گھنٹہ آپ نے کما لیا, آج آ گئے گھر پہ تو آپ کو سمے مل گیا. تو اس سمے میں کیول اس بھاگوت کو پکڑو, جاپ کرو, بھگوان کا سنگ, بھگوان کا درشن کرو, یہ سب چیزیں شاستروں کا ادھیان اس کو اس سمے کرنا چاہیے. انیہ چیزوں میں جیسے کئی کئی لوگ پرپات جی کہتے ہیں یہاں پہ رات کو لوگ جب سمے ملتا ہے تو رات کو لوگ ایک نائٹ کلب میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ اویدھ سنگ کرتے ہیں, استری سنگ کرتے ہیں اور ڈرنکس لیتے ہیں, نان ویج کھاتے ہیں, اس میں وہ اپنے آپ کے جیون کو پتیت بناتے ہیں. ایسا بالکل گرہستوں کو نہیں کہا گیا ہے. یدی آپ ایسا کریں گے, سادھوں کے سنگ سے یدی آپ بھاگوت سنیں گے تو کیا ہوگا, بولے ویموچیت, نشچے ہی آپ چھوٹ جائیں گے. کس سے؟ آسکتی سے. کس کی آسکتی؟ پریوار کی, پتر کی, پتنی کی. یہ آسکتی چھوڑنے کے لیے ہر شلوکوں میں پرہلاد مہاراج نے بھی کہا, نارد جی بھی یہی بات کر رہے ہیں, اور ان جتنے شلوک آئیں گے ان سب میں سارانش یہی رہے گا کہ ہم کو اپنے پریوار کی آسکتی جتنی جلدی ہو سکے ہم کو چھوڑ دینا چاہیے, اور تب جا کر کے ہمارا گرہست جیون سفل ہوگا. تو بات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ابھیکشنم شبد ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے ایک بار پوری بھگوت گیتا پڑھ لی, یا ایک بار پوری بھاگوت آپ نے پڑھ لی, اتنے سے کام نہیں چلے گا, نرنتر اس کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے. بھاگوت کو, بھگوت گیتا کو پڑھتے ہی رہنا چاہیے, پڑھتے ہی رہنا چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے ایک شلوک کو بھی آپ نے ایک بار پڑھا اور اس کو بار اور واپس پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ارے اس کا شلوک کا ارتھ تو یہ تھا, میں تو یہ پڑھا ہی نہیں. بارمبار آپ کو نیا نیا ارتھ اس کو معلوم ہوگا, اس لیے ابھیکشنم شبد یہاں پہ کہا گیا ہے. بولے یہ جو جیون کی چار چیزیں ہیں, جو استری سنگ کرنا, سونا, یہ سب چیزیں تو بولے پشو کے لیے پشو بھی کرتا ہے, ایک سور بھی کرتا ہے, تو اس میں ہمارے میں کیا بھید رہا؟ ہم کو ان چیزوں میں نہیں لپت ہونا چاہیے. ہمارا جو منش شریر ملا ہے وہ اس کے لیے نہیں ملا ہے, کرشن کی بھکتی کرنے کے لیے یہ منش شریر ملا ہے. اس لیے جیو کو پارجن کے لیے, کمائی کے لیے جتنا تھوڑا سمے دے سکیں, جتنے سے ہمارا کام چل سکے اتنا ہی ہم کو کمانا چاہیے, اور باقی چیزوں میں ہم کو اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. یہاں پہ یدھیشٹھیر مہاراج نے دیکھو اپنے کو گرہ موڑدھی کہا تھا, کہ میں گرہ موڑدھی کا مطلب گھر میں آسکت مورکھ ویکتی میں ہوں, تو ایسے مجھ مورکھ کو اور آپ مجھ کو یہ بتائیے کہ ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. یہ باتیں پرہلاد مہاراج نے بھی کہی ہیں جب ان کے پتا جی نے ان سے پوچھا, کہہ رہے تم اپنے گرو سے کیا سیکھ کے آئے ہو, اچھی بات کوئی ہم کو بتاؤ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو تساد من سوری دیہی نام, ہے اصروں میں شریش, جس نے بھی دیہ دھارن کیا ہے, جو بھی گرہست اور آشرم اس نے سویکار کیا ہے, تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بولے سمودگن, ہمیشہ چنتا میں وہ بنا رہتا ہے. اور اسد گرہات مانے ہمیشہ آسکتی میں, پتنی کی, پتر کی, دھن کی, درد کی, اسی میں وہ لگا رہتا ہے. تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بولے ہتوا, اس کو چھوڑو جتنا جلدی ہو سکے, اس کو چھوڑو. کیوں؟ کیوں گرہم اندھ کوپم, یہ گھر گرہستی کیا ہے؟ بولے ایک اندھا کنواں ہے. اندھا کنواں میں جیسے آدمی کوئی گر جاتا ہے اس میں پانی تو رہتا نہیں ہے, اور وہ گر جاتا ہے اور اس کو کوئی بھی بچانے والا ملتا نہیں ہے, تو ایسے اندھے کنویں میں گرہستی میں یدی ہم گر گئے تو ہمارا کلیان نہیں ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ بولے ونم گتو ید ہریم آشریت, ون میں چلے جانا چاہیے, اور جہاں پہ ہری کا آشر لے کر کے کرشن کی بھکتی کرنی چاہیے. یہاں پہ ون کا ارتھ پرپاد جی نے ونداون کو کہا ہے, ونداون میں چلے جانا چاہیے اور وہاں جا کر کے بھگوان کی بھکتی میں اپنے کو لپت کرنا چاہیے. बोले अपश्यताम आत्मतत्वम ग्रह मेधेशु ग्रह मेधिना, जो देहात्म बुद्धि से बिल्कुल जुड़े रहते हैं और भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर को अपने गृहस्थ में चिपके रहते हैं कि मुझको ये सुख मिल जाए ये सुख मिल जाए, उसी में चिपके रहते हैं, वे लोग अपने आत्मा का कल्याण नहीं देखते हैं और उनको सुख मिलता भी नहीं है, भौतिक सुख उनको कुछ भी मिलता भी नहीं है। इसीलिए प्रहलाद महाराज ने कहते हैं कि बारम्बार इस जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, बल्कि वृंदावन में जाकर के भगवान की भक्ति करनी चाहिए। वन जाने का क्या अर्थ है, बोले वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना। जो गृहस्थ हैं, एक्चुअली जो 50 इयर्स के हो गए हैं गृहस्थ, उनको तो वानप्रस्थ ऐसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। वानप्रस्थ का मतलब सबसे पहला जो क्वालिफिकेशन है वो ये है कि स्त्री संघ छोड़ देना चाहिए। तो ये वानप्रस्थ स्वीकार जब वो वन में चला जाता है, वृंदावन में चला जाता है, तो ये छोड़ करके और वह अपने पत्नी को ले जा सकते हैं, पत्नी भी भक्त है, पर वहां पर भी यही है कि स्त्री संघ उसको नहीं करना चाहिए और जाकर के दोनों भगवान की भक्ति करो, ये उसको करना चाहिए। इस संसारिकता में कितना दिन लिप्त रहोगे, अरे अपना पूरा दिन परिवार को पालने में लगा दिया, अब कितना दिन परिवार को पालते रहोगे, इसको छोड़ देना चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह बोले गृहस्थ है, ये ग्रहम अंधकूपम, ये अंधा कुआ है, इसको जितनी जल्दी आप छोड़ सकेंगे अच्छा है। बोले मतिर्न कृष्ण प्रतस्वतुवा, कृष्ण में जब गृहस्थ में हम आसक्त रहेंगे तो हमारी मति कृष्ण में नहीं लग सकती है, जितना सीरियसली कृष्ण में मति लगनी चाहिए वह लग नहीं सकती है। तो अदांत गोभी मिश्रताम तमिश्रम, बोले जो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है, तमिश्रम, नरक प्राप्त होता है उनको। बोले घर गृहस्थी नरक देने वाली है यदि अपने इंद्रिय तत्वों में लगे रहे, और यही घर गृहस्थी हमको भगवान का धाम भी दे सकती है यदि हम भगवान के भजन में लगे रहे। करते क्या है, पुनः पुनः चरवित चरवणाना, बार बार उसी को सुख को भोगते रहते हैं, कई जन्म मिले उन्हीं जन्मों में सबको ये बार बार हम सुखों को भोगते रहते हैं और कोई सुख है नहीं इनके अंदर में, कोई भी सुख इसमें नहीं है। बोले को ग्रहेश उपमान सक्तम, अरे कोई भी गृहस्थ ऐसा कौन है जो अजित इंद्रिय है, जिसने अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं किया है, वह अपने आप को छुड़ा सके, किससे छुड़ा सके, बोले स्नेह पाश्य, ये जो हमारी आसक्ति हो गई हमारी पत्नी में, हमारे पुत्र में, हमारे घर में, हमारे धन में, इस आसक्ति को छुड़ा सके ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है यदि वह घर गृहस्थी में और अपने इंद्रिय तृप्ति में लगा हुआ है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए सर्वप्रथम देखो बड़ी स्ट्रॉन्ग डोज प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में दे रहे हैं कि मनुष्य को गृहस्थ जीवन से मुक्त हो जाना चाहिए। गृहस्थ जीवन वास्तव में भौतिकता से आसक्त व्यक्ति के लिए और एक प्रकार का लाइसेंस दिया गया है, लेकिन जब तक इस लाइसेंस को आप कैंसिल नहीं करोगे तब तक आप भक्ति में नहीं आ सकते हैं और अपना जीवन समाप्त करते जाओगे और अपना जीवन सुधार नहीं सकते हैं। तो मनुष्य को अपना घरवार छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह अंधकूपम, अंधे कुएं में जाने के समान है। अतएव पहला उपदेश यह है कि गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए, किंतु यदि अनियंत्रित इंद्रियों के कारण उसकी इंद्रियां नहीं मानती, नहीं मुझको तो घर में रहना है और मुझको तो स्त्री संग करना ही है, मुझको तो धन भोगना ही है और मेरे बच्चे नौकर अच्छे इन सबको आसक्ति उसकी जो बनी रहती है, तो वह अधिकाधिक फिर बंधन में पड़ता जाता है, जकड़ता जाता है और वह भगवान की भक्ति फिर नहीं कर सकता है। बोले ऐसा कौन आदमी होगा जो कि अपने परिवार को छोड़ना चाहेगा, जैसे स्त्री, स्त्री को कैसे छोड़ सकता है वह, स्त्री उसको एकांत में उसको सुख प्रदान करती है, स्त्री उसके साथ में मधुर मधुर भाषण करती है, स्त्री उसके बच्चों को पालन करती है, स्त्री और उसको रोटी पका के देती है, कैसे उसको वह छोड़ सकता है, और बच्चे
چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی توتلی بولی سن کر کے اس کو سکھ ملتا ہے، کیسے ان بچوں کا وہ تیاگ کر سکتا ہے؟ پتری جو اپنے سسرال چلی گئی ہے اس کا بھی اس کو موہ رہتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی کیا ہوگی، اس کا وہ سمرن کرتا رہتا ہے۔ بھائی ہیں پریوار میں، ان کا وہ کیسے تیاگ کر سکتا ہے؟ اور پتروں دینوں بوڑھے ہو گئے ہیں ماتا پتا، ان کو بیچاروں کو وہ کیسے تیاگ کر سکتا ہے؟ اور گھر میں اتنا ساز سامان پڑا ہے، ایئر کنڈیشن ہے، گاڑیاں ہیں، صوفہ ہے بہت اچھا، ماربل لگا ہے، کیسے ایسے گھر کو وہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اور پشو مانے جیسے آج کل کے موٹر گاڑیاں سمجھ لو، یہ موٹر گاڑیاں سب ہیں، کیسے کیسے ان کو وہ چھوڑ سکتا ہے؟ اور بھرتیان بہت بہت سیوک ہیں اس کے، تو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو تجیت کوشہ ہوتا کیا ہے کہ وہ اس پرکار سے جیسے ایک ریشم کا کیڑا ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو چاروں طرف سے باندھ لیتا ہے اور اس کے نکلنے کا کوئی راستہ اس کو نہیں دکھتا ہے، کوئی نکلنے کا گیٹ اس کو نہیں ہے۔ اسی پرکار یہ گرہست اپنے آپ کو اس آسکتی کے اور بندھن میں باندھ لیتا ہے اور اس کو نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ملتا ہے۔ اور یہ کس کے لیے ہے؟ کیول دو چیزوں کے لیے، ایک جیب کے لیے اور ایک اپنا سیکرٹ آرگن کے لیے جس سے وہ سیکس کر سکے، بس دو چیزوں کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اور کیول وہ اس بندھن میں پڑتا جاتا ہے۔ تو یہ پرہلاد مہاراج کہتے ہیں کہ یہ سب تیاگ دینا چاہیے، یدی نہیں تیاگو گے تو اپنا کلیان نہیں کر سکو گے۔ ایک سلوک آیا ہے بھاگوت میں کہ یدی جیا جرتھے سوان پرانان، منوشیہ اپنی پتنی کو اتنا پریم کرتا ہے، جیسا بھی میں نے بتایا سب چیزوں میں بہت پریم کرتا ہے، اس پتنی کے لیے وہ کبھی کبھی اپنے پرانوں کو بھی چھوڑ سکتا ہے، کبھی کبھی وہ اپنے ماتا پتا کی ہتیا بھی کر دیتا ہے اس پتنی کے لیے، کبھی کبھی وہ اپنے گرو کی ہتیا بھی کر دیتا ہے اس پتنی کے لیے۔ تو ایسے پتنی کو بھی یدی کوئی چھوڑ دے اور وہ کرشن کی بھکتی میں لگ جائے تو اجیتو جیتا ہے، جس سے اجیت کرشن جیتے نہیں جا سکتے ہیں جلدی جلدی سے، پر ایسے ویکتی کے دوارا وہ جیت لیے جا سکتے ہیں۔ یدی ایسی پتنی کو بھی وہ چھوڑ دیتا ہے جس کے لیے وہ کئی کوکرم بھی کر سکتا ہے، تو اس لیے یہ پریوار آدی کی آسکتی میں زیادہ پڑنا نہیں چاہیے، جہاں تک ہو سکے اپنا بھگوان کی بھکتی میں گرہست کو لگنا چاہیے۔ نو یوگیندروں نے 11th کینٹو میں اور پربودھ جی نے بھی اسی پرکار کا ایک سلوک کہا ہے کہ نتیارتی دین وتین درلبھین آتم مرتیو نا، یہ جو دھن کمانے کے لیے ہم جو بھاگتے ہیں دن بھر، پروپا جی نے تو ایک جگہ کہا ہے کہ دھن کمانے کے لیے فورین میں انہوں نے دیکھا ہے کہ 5 بجے اٹھ جاتے ہیں اور وہ چلے جاتے ہیں 100 کلومیٹر کی ٹریولنگ کرتے ہیں اور کر کے، اور پھر وہاں پہ 8-9 گھنٹہ وہ کام کرتے ہیں، اور جب آتے ہیں پھر وہی 100 کلومیٹر چل کے آتے ہیں، آتے آتے 7-8 بج جاتا ہے ان کو، اور آ کر کے پھر کھا کھا کے پھٹ سے سو جاتے ہیں، 10 بجے تک سو جاتے ہیں۔ تو ان کو بولے ٹائم ہی کہاں ملتا ہے بھجن کرنے کا، تو ایسا جیون ڈسکارڈیڈ، ایسا جیون اڈپٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہی پربودھ جی بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ نت آرتی دینا، یہ جو دھن ہے، دھن کمانے کی جو اچھا ہے اور دھن ہے، یہ آرتی کشٹ ہی کشٹ دینے والا ہے اور درلبھ، حالانکہ یہ بہت آسانی سے نہیں کمایا جا سکتا ہے، بہت کٹھنائی سے کمایا جا سکتا ہے، لیکن آتم مرتیو نا، یہ مرتیو کا ہی کارن ہے، یہ دھن ہے اور مرتیو کا ہی کارن ہے، اس کی مرتیو ساتھ میں رہتی ہے، مرتیو دھن کے روپ میں رہتی ہے۔ جیسے کسی کے پاس پتا چلے کہ کافی بہت دھن ہے اس کے پاس، تو واسطو میں تو وہ مرتیو اس کے ساتھ میں ہے، دھن کے لیے دوسرے لوگ اس کو مار دیتے ہیں۔ جیسے شریپاد سناتن گوسوامی جب چلے تھے تو ان کے ساتھ ایشان ان کا سیوک جب لے کر کے پیسہ چلا تو سناتن گوسوامی جب دیکھے کہ وہ ایک ڈاکو کے یہاں رات کو ٹھہرے تھے کہ یہ ہمارا بہت بڑا سواگت کر رہا ہے، ہمارے سے اس کا کوئی پریچے نہیں ہے، खूब अच्छा खाने पीने को दे रहा है, हमारा इतना स्वागत क्यों कर रहा है। तो उसका प्लान था उस डाकू का कि रात में इनको मार करके और इनके पास जो 8 मुद्राएं हैं वो छीन लेने का, उसको वह लेना चाहता था, इसलिए खूब स्वागत कर रहा था। तो वो ये सोचा कि ये लोग खा लेंगे पी लेंगे, उसके बाद इनको मार कूट करके और इनका 8 मुद्रा ले लूंगा। तो सनातन गोस्वामी तो बहुत बड़े मंत्री थे, वे दिमाग से सब चीज समझ गए। वे अपने सेवक से पूछे ईशान से कि क्या तुम्हारे पास कुछ धन है, तो वो बोला कि हाँ मेरे पास 7 मोहर है। उसने भी एक मोहर का झूठ बोल दिया, उसने एक्चुअली थी 8 मोहर, बोले हाँ 7 मोहर है। तो सनातन गोस्वामी कहा ठीक है लाओ 7 मोहर है तुमको दे दो। बोले ये सब यमराज को लेकर के क्यों साथ में चल रहे हो तुम। वे गए उस डाकू के पास और वे 7 मोहर लेकर के बोले कि देखो अब हम तो साधु हो गए हैं, हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप इसको ग्रहण कर लीजिए। तो जब उसकी सच्चाई पे आग देखा सनातन गोस्वामी के, तो वह खुश हो गया। वो बोला कि बात तो यह है कि मैं आज रात को ही आपको मारना चाहता था और इस धन को ग्रहण करना चाहता था, लेकिन आप चूंकि इतने ईमानदार निकले, आप इस धन को ले जाइए। सनातन गोस्वामी बोले नहीं नहीं अभी हमको नहीं चाहिए, कि आप नहीं मारे और कोई मारेगा इसके लिए हमको, तो इसलिए बेटर है आप ही इसको ले लो। तो उन्होंने उसको दे दिया, पर उसने बताया कि देखो एक मुद्रा अभी भी उसके पास है। तो ईशान को पूछा क्या अभी भी तुम्हारे पास है, बोले हाँ है। तो फिर बोले इस मृत्यु को लेकर क्यों तुम साथ में चल रहे, उसको वे छोड़ दिए, भगा दिए उसको सनातन गोस्वामी, नहीं नहीं तुम हमको कभी भी जान मरवा दोगे। तो वहीं पर उसको धन को कली और यमराज कहा गया है, कली और यमराज को लेकर के तुम चढ़ रहे हैं। तो इसी को प्रबुद्ध जी यहां पे कहते हैं आत्म मृत्यु। प्रबुद्ध जी कह रहे हैं कि धन क्या है, बोले मृत्यु व्यक्ति की मृत्यु है साथ में। अरे जो मृत्यु के कारण बन गया उसी को मृत्यु कहते हैं ना, बोले धन के कारण मर गया इसीलिए उसको मृत्यु कहते हैं आत्म मृत्यु। तो एक तो स्वरूप से ही मृत्यु हो जाती है जीव की, और धन तो इंद्रियों की उत्पत्ति में जाता है धन। तो ये खाएं ये भोगें ये करें ये सब करें तो स्पिरिचुअल आदमी को वो पतित कर देता है धन, वह भक्ति में आने नहीं देता है। तो जितना जल्दी हो सके इस धन का परित्याग करना चाहिए। इसलिए हमारे षड गोस्वामी ने क्या किया, त्यक्त्वा तूर्णम अशेष मंडल पति, अशेष मंडल पति खूब धनी थे वे लोग, लेकिन सब कुछ त्यक्त्वा छोड़ दिया। तो धन से अनेक कामनाओं का जन्म होता है और इसीलिए इसको यहां पे आत्म मृत्यु कहा गया। इसलिए इसको कहा गया का प्रीति, ऐसे में क्या तुम प्रीति करते हो, और ग्रहे अपत्य आप्त पशु, इनमें भी क्या प्रीति करते हो, घर में संबंधियों में। और घर का यहां पे दो अर्थ लिया गया है, एक तो घर और दूसरा पत्नी को भी घर कहते हैं, क्योंकि ग्रहम न ग्रहम ग्रह मित्याहु ग्रहिणी ग्रह मुच्यते, घर जो संभालती है उसको भी घर कहा जाता है। तो ये हमारे जो है ये जन्म से हमारे साथ में नहीं थे, ये बाद में हमको मिले हैं, इसलिए इनमें इतना आसक्ति नहीं बढ़ानी चाहिए। और बोले ये कहां तक साथ में जाएंगे हमारे, बोले कई लोग एक कवि ने कहा है कि सब कुछ यहीं पे छूट जाता है, बहुत काल के बाद ये लोग सब मिलते हैं बहुत प्रयास करने पर, लेकिन यहीं पे छूट जाता है। तो इसको एक श्लोक में कहा गया कि धनानी भूमो, क्या क्या चीज कहां कहां छूट जाती है, बोले धनानी भूमो, कुछ धन ऐसे होते हैं जो भूमि में गड़े गड़े रह जाते हैं, जैसे पहले के लोग सोने की मोहरें उसी में गाड़ करके और भूल जाते थे। तो धनानी भूमो, धन भूमि में या बैंकों में रह जाता है, तो धनानी भूमो। और पशुवश्च गोष्ठे, और गोष्ठ में पशु बंधे के बंधे रह जाते हैं, कोई ये कहे कि यार इनको एक दो पशु साथ में दे दो, मृत्यु के समय नहीं होता है वहीं रह जाते हैं। अच्छा पशु का यहाँ पे ये भी अर्थ कर सकते हैं कि मोटर गाड़ियां गैरेज में ही वे रह जाती हैं। और भारिया गृह द्वारी, पत्नी कहां तक जाती है, घर के द्वार तक। ऐसा हमारे यहाँ सिस्टम है कि पत्नी शमशान तक साथ में नहीं जाती है, तो पत्नी उस शव के साथ में केवल घर द्वार तक ही वह जा सकती है। और जना शमशाने, और लोग कहां तक जाते हैं, पूरे शमशान तक जाते हैं। تو بھاریا گرہ دواری جنا شمسانے اور دیہ کہاں تک جاتا ہے؟ بولے دیہ چیتایام، جب تک چیتا ہے تب تک وہ دیہ جاتا ہے، پھر دیہ جل جاتا ہے، اور سوجن شمشان تک جاتے ہیں. تو کرمانوگو گچھتی جیو ایک ہے، کوئی بھی دیکھو ساتھ میں نہیں گیا، اتنا کمایا دھمایا، اتنا آسکتی کیا، میرا میرا میرا، کوئی بھی ساتھ میں نہیں گیا، تو ساتھ میں جیو اکیلا جاتا ہے. کرمانوگو اپنے کرموں کے انوسار جیو اکیلا آگے بڑھتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ میں جاتی نہیں ہے، ان کے لیے ہم کیوں اتنا ہائے ہائے کریں؟ یہی سب چیزیں اس گرہست آشرم میں نارد جی پروچن کر رہے ہیں کہ کمانے کے لیے زیادہ پریشرم نہیں کرنا چاہیے، بھگوان کی بھکتی کرنا چاہیے، اور جو بھی دھندا بھی کریں وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرو جس سے آپ کا جیون یا چرتر پتیت ہو جائے، اور بھاگوت کا نتیہ شرون کرو، نتیہ سیون کرو. اور یہ تینوں آشرم کے لیے تو ہے ہی، وانپرست، سنیاس اور برہمچاری کے لیے تو ہے ہی، گرہستوں کے لیے بھی، کہ بھاگوت کا شرون، بھاگوت کا پڑھن بار بار نتیہ کرتے جاؤ. ہرے کرشنا. کسی کا کوئی پرشن یا آشیرواد؟
ہرے کرشنا. تو پربھوپاد بھاگوتم میں ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ استریوں کو آلنگن کرنے سے پہلے ویکتی کو سوسائڈ کرنا چاہیے یا اگنی کو آلنگن کرنا چاہیے.
کیا کرنا چاہیے؟
استریوں کے سنگ کرنے سے پہلے،
استری سنگ، ہاں،
تو ویکتی کو جان بوجھ کر سوسائڈ کر لینا چاہیے یا تو اگنی کو آلنگن کرنا چاہیے. اور آج کے شلوک میں بتا رہے ہیں کہ جو اب بھوتک شریر کے لیے سیکس جو ہے وہ پرمکھ آوشیکتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
اس کے ساتھ میں بھی تو بتایا کہ چھوڑنا ہے اس کو، یہ بھی تو بتایا نا ساتھ میں، اسی پرپٹ میں ہے یہ بات کہ اس کو جلدی سے جلدی چھوڑنا ہے، یہ آوشیکتا ہے. اس آوشیکتا کو، اس آوشیکتا کے بش میں ہم کو نہیں ہو جانا ہے، ہم کو اس کو کنٹرول کرنا ہے، تو اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا، اس کے بش میں نہیں ہونا ہے. سب جگہ بھاگوت میں یہ لکھا گیا ہے، جتنا جلدی، اور پرپاد جی نے کئی جگہ یہ بات کو لکھا ہے، جتنا جلدی آپ استری سنگ چھوڑ دو گے اتنا جلدی بھکتی میں آگے آ جاؤ گے، اور جہاں تک ہو سکے برہمچاریوں کو گرہست میں آنا ہی نہیں چاہیے، سیدھے سنیاس ہو سکے تو. جس سے نہیں ہو سکتا ہے اسی کے لیے ہی یہ گرہست آشرم بنایا گیا ہے، اور ہم پتت جیسے لوگوں کے لیے ہی گرہست آشرم ہے، یہ کوئی اچھا آشرم نہیں ہے. پر بھگوان کی بھکتی بھی اسی سے بھی ہوتی ہے. آج گرہست آشرم میں رہ کر کے، اور یدی آپ پورے پریوار کو بھگوان کا بھکت بنا لیں اور سب سنیاسیوں کو وہاں پہ پروچن کے لیے بلائیں، پرساد کھلائیں، اس سے بڑھیا کیا گرہست ہو سکتا ہے؟ اپنے پیسے کا سدوپیوگ ہو سکتا ہے، پر استری سنگ تو چھوڑنا پڑے گا. اور کسی کا کوئی پرشن ہے؟ ہے کسی کا کوئی؟ آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، یہ پربھو جی جو بیٹھے ہیں نا، یہ ورنداون چندر پربھو ہیں، یہ امریکہ سے آئے ہیں، یہ نیو جرسی ٹوکو ٹیمپل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں. یہ اور ان کی پتنی ماتا جی یشودا جسومتی میا وہاں بیٹھی ہے کرسی پہ پیچھے. ان دونوں نے اپنا سب کچھ، جاب، پیسہ چھوڑ دیا، کروڑوں روپیہ تھا، کروڑوں روپیہ تھا، سب اس ٹوکو ٹیمپل میں دان میں دے دیا اور اپنا گھر بھی چھوڑ دیا. دونوں پتی پتنی مندر میں رہتے ہیں، بھگوان کی سیوا کرتے ہیں، اور یہ سمجھ لیجیے وہ مندر ان کی سیوا کے کارن ہی چلتا ہے. اور اتنے ورکت ہیں، ماتا جی تو ان کھاتی نہیں ہے، خالی ایک ٹائم پھلہار کرتی ہیں، دودھ پیتی ہیں، اور پربھو جی اتنے ورکت کبھی بھی گھر میں آ سکتی نہیں، پیسے میں آ سکتی نہیں. اور ابھی نیا ٹیمپل بن رہا ہے، اس میں بھی کتنا بڑا دان دیا ہے انہوں نے. तो ये धन का उपयोग इसी प्रकार जो प्रभुपाद जी कहते हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ये इसको ये साक्षात मूर्ति है। तो कोई कह सकता हम छोड़ नहीं सकते हैं, कोई एग्जाम्पल है धन छोड़ना, स्त्री छोड़ना, स्त्री छोड़ना मतलब स्त्री का संग छोड़ना, स्त्री साथ में रह सकती है। थर्ड कैंटो में प्रभुपाद जी ने लिखा है इस बात को देवहूति के प्रकरण में, वानप्रस्थ मतलब अपना स्त्री का संग छोड़ना। तो नहीं हो सकता ऐसी बात नहीं है, हमको दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि हम कृष्ण की भक्ति करेंगे। अभी अभी ये ब्रज परिक्रमा करके आए, अभी इनका शरीर देखिए आप, और ब्रज परिक्रमा करके आए ये पैदल। हरे कृष्णा। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय।